તારીખ 2/1/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 510 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 27
પત્ર 510 માં ચાલશે. મોક્ષો કી ભૂમિકા મેં જે દર્શન નો યથાર્થ પ્રકાર છે, જબ તક કમજોર નહીં હોતા તબ તક મોક્ષ કો ભી કુટુંબ પ્રતિબંધ રહેતા હૈ. चार प्रकार के प्रतिबंध कृपालु देव ने बताए हैं. समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, शरीर प्रतिबंध और संकल्प विकल्प प्रतिबंध. समाज की मुख्यता करके आत्मकल्याण के साधन को गौण करना, यानी आत्मसाधन आत्मकल्याण को गौण करना, ये समाज प्रतिबंध है. उसमें समाज की नज़र में अपनी इज्जत बनाए रखने का अभिप्राय रहता है और उस अभिप्राय के कारण से तीव्र परलक्ष्य रहता है और परलक्ष्य रहने के कारण से अपना स्वलक्ष्य चुक जाता है जी. तो अपना आत्मकल्याण वो कर सकता नहीं है. ठीक उसी तरह कुटुंब प्रतिबंध होता है, उसमें कुटुंब को मुख्य करके या कुटुंब के कार्यों को मुख्य करके कुटुंब स्नेह के वशात, क्या कुटुंब स्नेह के वशात आत्मकल्याण और आत्मकल्याण के साधन को गौण कर देना, ये कुटुंब प्रतिबंध है. इस पत्र में जो उपदेश दिया है कृपालु देव ने वो कुटुंब प्रतिबंध हटाने के लिए दिया है. और कुटुंब प्रतिबंध किसका हटता है कि जिसका दर्शन मोह कमजोर होता है. उसका दर्शन मोह से परिणाम क्या होता है कि अपनत्व, कुटुंब परिवार आदि में अपनत्व रहता है. कल चर्चा अपनी स्वाध्याय में चल रही थी कि अपनत्व करके कुटुंब कार्य नहीं करना है. कुटुंब कार्य तो करना ही पड़ेगा और प्रामाणिकता से करना भी चाहिए जी. क्यों कि अपनी सुविधा भी कुटुंब से मिलती है, कुटुंब वाले की सुविधा भी हमारे से मिलनी चाहिए. ये तो परस्पर के ड्यूटी हो जाती है. जब ये फर्ज निभानी है तब हमें सावधानी क्या रखनी है, उतनी सी बात है कि हमें वो सावधानी रखनी है कि अपनत्व नहीं करना है. अपनत्व नहीं करना चाहिए. ऐसा प्रयास करने से अपनत्व ढीला होता है, मोक्ष की भूमिका में जाता नहीं. जाएगा तो ज्ञानी दशा में ज्ञानी का जाएगा. मुमुक्षु की भूमिका पार करके ज्ञान दशा में प्रवेश होगा तभी अपनत्व जाएगा जी. इसके पहले अपनत्व जाता नहीं मुमुक्षु को, लेकिन ढीला तो अवश्य कर सकता है और ढीला हुए बिना जाएगा भी नहीं. जब तगड़ा होगा जब तक तहां तब तक तो जाने वाला है ही नहीं। तो कुटुंब कार्य करते हुए भी अपनत्व ढीला हो जाए, इसकी मुमुक्षु की सही भूमिका है, वो विषय में बात कर रहे हैं। जब कुटुंब में भी कुटुंब के सदस्यों के, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी संबंध हो, जब दोनों की भावना आत्मकल्याण की है तो दोनों तो समझदार हो गए कि अपने को अपनत्व किए बिना साधर्म्य वात्सल्य और बढ़ा करके, साधर्म्य वात्सल्य को बढ़ा करके एक दूसरे को आत्मकल्याण करने में ऑपरेशन देना है तो अच्छी बात है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होती। क्या इस प्रकार का भय रहता है? नहीं, अपनत्व होना अलग बात है, वात्सल्य होना अलग बात है। वात्सल्य है वो धर्म प्रेम है जी। वात्सल्य क्या चीज है? धर्म प्रेम को वात्सल्य कहते हैं और संसार प्रेम को वात्सल्य नहीं कहते हैं। वो तो संसार का राग है, माया है। संसार के राग का तो, संसार का तो परस्पर का जो राग है उसका आधार, उसका माध्यम धर्म नहीं है, और यहाँ वात्सल्य का माध्यम धर्म है। क्या है? वात्सल्य का माध्यम
धर्म है,
धर्म है। माध्यम बदल जाता है, वो नहीं समझ सके क्या? माध्यम को नहीं समझ सके क्या कि हमारा माध्यम कौन सा है? देखो, कुटुंब के राग में अधिकार बुद्धि होती है
जी।
क्या होता है?
अधिकार पाओ।
और धार्मिक वात्सल्य में मैत्री रहती है। मित्र कभी अधिकार करता है क्या?
दोस्त
तो सच्ची मैत्री में उसमें अधिकार नहीं होता, स्नेह होता है, प्रेम होता है। पर संसार के संबंध में तो अधिकार बुद्धि आए बिना रहेगी नहीं। तो मेरा अधिकार है, जो भी संबंध है उस संबंध के नाते अधिकार, अधिकार को भोगना, ये वृत्ति रहती है। तो दोनों में तो बहुत बड़ा फर्क है। एकदम डिवाइड हो जाता है, बात अलग हो जाती है।
प्रश्न के कंटिन्यूशन में दूसरा प्रश्न है कि रिवर्स हो जाए, कि दोनों का सहमत नहीं हो तो भी क्या करना चाहिए, वो भी आप बता दो।
जब एक दूसरे के विचार भेद चलते हो, अभिप्राय विरुद्ध चलता हो, भेद मैंने विरुद्ध समझो, तो एक तो समझाने का कोशिश करें। सबसे पहले तो देखिए, हमारा आपका जो संबंध है उसमें एक दूसरे के नुकसान हुए, बुराए हुए, या एक दूसरे को कोई तकलीफ हुए, दुख पहुँचे, ये तो नहीं चाहते आपस में। अपनत्व होने से एक दूसरे को दुखी करने का तो नहीं चाहते। तो पहले तो समझाने का कोशिश करें। देखिए, ऐसी लोकोत्तर सुख के मार्ग, लोकोत्तर सुख का उपाय, ऐसी पूरी लाइन कहीं नहीं मिलती एक इसी धर्म के सिवा विश्व में कहीं नहीं। तो ऐसी अमूल्य चीज को समझने की कोशिश करो। समझ आने से कहना नहीं पड़ेगा, जहाँ तक नहीं समझ आती है वहाँ तक समझना। फिर भी कोई संसार के बंधन और मोह के वशात समझना ही नहीं चाहे ऐसा भी बन सकता है। कोई तो समझता है, समझदार होता है, क्योंकि अपना निज सुख की तो बात है, बात तो अपने सुख की है, अपने स्वार्थ की है, बहु भाग तो समझदार समझ जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं ना समझ होते हैं, समझना चाहते भी नहीं, ऐसा भी बनता है। तो फिर उसके ऊपर कोई बात थोपना नहीं, थोपना नहीं, दबाव लाना नहीं, कुछ नहीं करना, उसकी स्वतंत्रता उसको भूलनी और अपना अपन अपने रास्ते पे चलो, अपना अपना कार्य करो। इस विषय में फिर चर्चा करोगे तो दबाव का उसको लगेगा कि मेरे पर दबाव आ रहा है, ये थोप रहे हैं अपनी मान्यता को, अपने विचारों को लादना नहीं है, थोपना नहीं है। इतनी सावधानी रख करके कोई अपील करता है तो समझदार तो बहुत भाग समझ जाता है, फिर कोई ना समझ हो नहीं समझे तो फिर छोड़ देना, इस बात को मान लेना कि अभी इनका परिभ्रमण ज़्यादा है, इसकी हुनर अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे। जिसकी हुनर अच्छी नहीं है, जिसको परिभ्रमण बहुत है, इसको ये बात की रुचि नहीं हो सकती है, तो उसमें कोई अपना अपना प्रयास काम में नहीं आएगा। और हट से कुछ करेंगे तो क्लेश बढ़ जाएगा, तो क्लेश तो करना नहीं है, क्लेश बढ़ाना भी नहीं है। अपने अपने कार्य में लगो, उनको उसका काम करने दो,
तो अमुक मर्यादा तक बोलने का, बाकी आगे नहीं जाना।
बात शांति से समझदारी से करनी है, अगर ठीक हो गया तो इसका भी भला है, नहीं ठीक हुआ तो हम क्या करेंगे, इसका तो कोई इलाज संसार में है ही नहीं, जगत में सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, इसकी स्वतंत्रता पर तराप लगाना ये हमारा काम नहीं है।
लौकिक मित्रता और धार्मिक मित्रता दोनों में निस्वार्थपना है, तो यहाँ पर क्या लगेगा?
लौकिक मित्रता में 99% निस्वार्थता नहीं होती। अपवाद को एक और रख दें, बाकी 99% तो कुछ न कुछ स्वार्थ होता ही है। धार्मिक मित्रता में स्वार्थ नहीं होता, धार्मिक मित्रता में तो अगले की भलाई को मुख्य करके मित्रता रखी जाती है, कि इसका भी भला हो, इसका भी कल्याण हो, इतनी सी बात है। चलते विषय में क्या है, यदि जीव जरा भी विचार करे तो थोड़ा भी विचार करे तो यह बात स्पष्ट समझ में आने जैसी है कि हमारे जीव ने, इस जीव ने, मैंने थर्ड पर्सन नहीं लेना, हमारे जीव ने किसी अन्य जीव में पुत्रपणे की भावना करके अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रखी। देखिए, हमको तो दो चार रोटी खानी है, लेकिन इतने परिवार में लड़के लड़की हैं, इसके लिए तो कुछ करना चाहिए कि नहीं। उसके लिए जो भी करता है उसमें उतना कर्म बंद करता है, उतना कर्म बंद करता है कि अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रखते। और किसी को पिता मानकर भी वैसा ही किया है, पुत्र के लिए भी किसी ने किया तो किसी ने पिता के लिए किया, तो किसी के भाई ने लिए किया, तो किसी ने दूसरे परिवारों के लिए किया। और कोई जीव अभी तक तो दूसरे जीव का पिता पुत्र हो सका हो ऐसा देखने में नहीं आया, क्योंकि ये भी एक जीव है। परिभ्रमण करता हुआ प्रारब्ध के योग से यहाँ संयोग हुआ है, वास्तव में वो कोई पिता पुत्र होता नहीं है। क्योंकि ऐसा बनता है कि दादा है वो पुत्र बन जाता है, क्या करोगे? आज तो दादा है मैंने पिता के पिता वृद्ध हुए और पुत्र वधु के पेट में आ जाता है, क्या करोगे? यहाँ आयु पूरा हो यहाँ उसका गर्भ में आना हो जाता है, उसको दादा कहेंगे या पौत्र कहेंगे, क्या कहेंगे? वास्तव में नहीं है, फिर भी जैसा संबंध बनता है वैसा व्यवहार करने में आता है, व्यवहार की बात अलग है। निश्चय से वास्तव में कोई किसी का पुत्र पिता हो सकता नहीं है, सब कहते आए हैं संसार में तो सब व्यवहार करते आए हैं कि इसका यह पुत्र अथवा इसका यह पिता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा व्यवहार भी होता है, परंतु विचार करते हुए स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह बात किसी भी काल में संभव नहीं है, ये बन ही नहीं सकता, वास्तविकता है वो है। क्यों? कि अनुत्पन्न ऐसा इस जीव की, जो इस जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते कोई जीव को, अनुत्पन्न ऐसे इस जीव को पुत्र रूप से मानना अथवा ऐसा मनवाने की इच्छा रहना, यह सब जीव की मूढ़ता है। दूसरे जीव के बाप बन के बैठ जाए, ज्ञानी कहते हैं कि यह जीव की मूढ़ता है और कुछ नहीं है,
नहीं है,
ये जीव की मूढ़ता है और कुछ नहीं है। पिता को अधिकार बुद्धि छोड़ देनी, और पुत्र हो तो पुत्र को भी पुत्र के का अधिकार पना छोड़ देना चाहिए। आप मेरे पिता हो इसलिए आपकी संपत्ति में मेरा अधिकार है, ये काम अपना नहीं है। और तुम मेरे बेटा हो इसलिए तुमको मेरी माननी पड़ेगी, ये काम भी हमारा नहीं है, दोनों बात छोड़ देना चाहिए। ये स्वतंत्र जीव है, सही बात को समझाओ, इसकी आत्मकल्याण की मांछा करो, सद्भावना रखो, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपने को अपना काम बहुत बाकी है, अपने को अपना काम
बहुत बाकी
है, फुर्सत कहाँ है?
दूसरों की चिंता करने,
दूसरों का लक्ष्य करने का भी निषेध है, तो आगे की बात तो कोई रहती मूढ़ता। इसलिए कहते हैं मूढ़ता का मतलब क्या होता है मालूम है? जो जीव अपने आप को नुकसान करता है और मानता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, इसका नाम मूढ़ता है। मूढ़ता किसको कहते हैं? कि अपने को नुकसान करके भी मानता है कि मैं सही कर रहा हूं, ये जीव की मूढ़ता है।
पागल जैसे पागल,
क्योंकि यहां तो ये लिया है कि अनुत्पन्न ऐसे जीव का जीव को किसी जीव को पुत्र रूप से मानना, ये मेरा पुत्र है, और पुत्र को मनवाना कि तुम मेरा पुत्र है, ख्याल रखना मैं तेरा बाप हूं तुम मेरा पुत्र है, मत भूलना, ऐसी इच्छा रखना, यह सब जीव की मूढ़ता है। ज्ञानी करुणा से कहते हैं, ज्ञानी जो कहते हैं वो करुणा से कहते हैं, और यह मूढ़ता किसी भी प्रकार से सत्संग की इच्छा वाले जीव को करना योग्य नहीं है। तो ऐसी इच्छा जो सत्संग करता है ऐसे जीव को ऐसी इच्छा करनी नहीं चाहिए। दूसरे की बात अलग हो, जो सत्संग नींद में नहीं आता हो, सत्संग में आने वाली बातों को नहीं समझता हो, ऐसे संसारी जीव तो कुछ भी करेगा, देखो उसका तो ये विषय नहीं, उसका तो ये विषय नहीं, इस प्रकार की समझ भी नहीं, इस प्रकार की चर्चा वार्ता उन लोगों में होती नहीं, ये विषय उन लोगों का नहीं है तो क्या करें। लेकिन जो सत्संग में आता है और इसकी चर्चा करते कि कुटुंब प्रतिबंध क्या चीज है, कैसे कैसे होता है और होने से जीव अधोगति में चला जाता है, वो कितना बड़ा अपराध है, दर्शन में तगड़ा हो जाता है, इसलिए कुटुंब प्रतिबंध तो होना ही नहीं चाहिए, उनको तो खास जागृति रखनी चाहिए। आपने जो मुहादि प्रकार के विषय में लिखा है यह दोनों के लिए भ्रमणा का हेतु है, तो त्रिभुवन भाई को पत्र लिख रहे हैं, तो उसको व्यक्तिगत कह रहे हैं कि आपने जो मुहादि प्रकार के विषय में लिखा है कि हमको हमारे परिवार में ऐसा मोह रहता है, कहते कि ये तो भ्रमणा है आपकी, ये भ्रमणा नहीं चाहिए, ऐसी भ्रमणा होनी नहीं चाहिए। वो दोनों के लिए भ्रमण का हेतु है, दोनों के लिए भ्रमणा नहीं, भ्रमण का हेतु है, परिभ्रमण का हेतु है। आप यदि अपने परिवार के प्रति अपनत्व रखोगे ये परिभ्रमण का हेतु है। देखो धर्म क्या सिखाता है जी, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। कुटुंब के बीच में रहो और कुटुंब में अपनत्व मत करो। धर्म ये नहीं कहता कि तुम कुटुंब छोड़ के चले जाओ, अभी घर छोड़ के निकल जाओ, ये नहीं कहता। अभी पहले तुम अपनत्व को छोड़ो, फिर तुमको कभी छोड़ने का स्वरूप स्थिरता के लिए, आत्मकल्याण के लिए, स्वरूप में जम जाने के लिए छोड़ने का अवसर आएगा तो कोई तुमको जोर पड़ेगा नहीं, जोर नहीं आएगा, ये मुझे छोड़ना पड़ता है, ये मैं छोड़ना है, मैं छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे अपने तो छूट गया है, तब फिर कोई आपत्ति नहीं आती। ये क्रम है त्याग का, ये क्रम है कि पहले अपनत्व को छोड़ो, फिर वस्तु का त्याग आता है। अपना तो छोड़े बिना वस्तु का त्याग हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। सही अपनत्व किस आधार से छोड़ना, पहले तो आत्मकल्याण की भावना के आधार से, और भावना में आगे बढ़े और स्वरूप ज्ञान हुए तो फिर निज स्वरूप के आधार से, स्वरूप में अपनत्व करना। स्वरूप में अपनत्व करने से सभी अन्य जीव और अजीव सभी पदार्थ से भिन्नत्व हो जाएगा। लेकिन पहले से हम कहें कि आप आत्मा के आधार से अपनत्व को छोड़ो, तो आपका ये प्रश्न आएगा कि आत्मा को तो हम जानते नहीं, समझते नहीं, अनुभव हुआ नहीं, करें क्या। बात तो ठीक है कि जिसने आत्मा को जाना नहीं वो अपनत्व कैसे करेगा, निज रूप से निज को जाना नहीं तो अपनत्व तो होएगा नहीं, तो भिन्नत्व भी बार से होएगा नहीं। लेकिन आत्मकल्याण की भावना तो कर सकते हो हर हालत में, उस भावना के वसात अपनत्व को ढीला कर दो कि मुझे कल्याण करना है, पर अपनत्व अकल्याण कराता है, तो अकल्याण नहीं करना है तो ढीला तो हो जाए अपनत्व, नहीं हो सकता। बस पहला स्टेज वो है भावना का, दूसरा स्टेज है आत्मज्ञान का, तीसरा स्टेज है आत्मस्थिरता का
जी,
और चौथे स्टेज में तो भगवान बन जाता है, खुद ही भगवान बन जाता है मुनि दशा के बाद। मुनि दशा में बाहर का संबंध छूट जाता है, सर्व संबंध नु बंधन तीक्ष्ण छेदिने विचर सो कहो महत्पुरुष ने पंथ जो। महत्पुरुष मैंने तीर्थंकर आदि महापुरुष नो जो मार्ग है वो मार्ग में हम कम विचरेंगे, सर्व संबंध का बंधन छोड़ देंगे तब। तो इसके पहले इसके साथ रह करके अपनत्व छोड़ो, आपको मिठाई की थाल, मिठाई का थाल भरा हुआ है, इसके सामने बैठ करके मिठाई की मिठास तोड़नी है क्या? मिठाई का त्याग करके मिठाई की मिठास ऐसे नहीं टूट सकती कि चलो खाना ही नहीं, हम 20 साल से मिठाई नहीं खाएंगे, पता ऐसे नहीं छोड़ते। पहले मिठाई के सामने बैठ करके उसको इसकी मिठास को छोड़ो कि इसमें कुछ नहीं है।
ये गुरुग्राम से
है,
ये गुरुग्राम से
धर्म की कार्य पद्धति यही है, ये धर्म की कार्य पद्धति ही यही है कि आपका रस छूटे बिना त्याग बेकार है, रस छूटे बिना त्याग
बेकार
है। क्योंकि रोग तो अंदर रह गया, आपने मलम पट्टी ऊपर से कर दिया और अंदर में तो सड़ा चालू है। रुंधाई लो कषाय छे, कैसा है रुंधाई लो कषाय, आपने जो मुहादि प्रकार के विषय में लिखा है वो दोनों के लिए भ्रमण का हेतु है। आपने जो लिखा कि हमको हमारे परिवार के प्रति इतना मोह रहता है, ये तो परिभ्रमण बढ़ाएगा आपका, अत्यंत विटंबना का हेतु है। परिभ्रमण माने क्या? बहुत विटंबनामय जन्म मरण होएगा, अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करें, क्या ज्ञानी पुरुष भी इस तरह आचरण करें तो ज्ञान को ठोकर मारने जैसा है। ज्ञानी को भी कुटुंब प्रतिबंध अलाउड नहीं है ऐसा कहते हैं, ज्ञानी भी कुटुंब के बीच में रहते हैं, कुटुंब प्रतिबंध नहीं करने का, अगर करे तो ज्ञान को ठोकर मारता है ऐसा कहते हैं।
पग मुकवा जेवु छे गुजरात में, पग मुकवा जेवु छे, पग मुको
नान ऊपर पग मुकवा जेवु छे, ठीक है। ये जरा जोरदार शब्द दिया हिंदी भाषा में, ठोकर मारना है, ज्ञान को ठोकर मारने की बात हो गई। ज्ञान तो भिन्नत्व कराता है और अपनत्व कर लिया तो ज्ञान को ज्ञान के ऊपर पैर रख दिया, ज्ञान को ठोकर मार दी। ज्ञानी पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करें तो ज्ञान को ठोकर मारने जैसा है, और सब प्रकार से अज्ञान निंद्रा का वह हेतु है। अज्ञान निंद्रा, वो निंद्रा आ जाएगी ना तो वो निंद्रा का कारण है। इसलिए ज्ञानी परिवार के बीच में रहते हुए भी अपनत्व करते नहीं है। गोपाल देव गद्दी पे जाते थे, व्यापार करते थे, तो क्या लिखा कि ये फलाने फलाने का कर्ज चुका रहे हैं, क्या
कर्ज चुका रहे हैं,
कर्ज चुका रहे हैं, बाकी हमारे परिवार के लिए हम करते हैं सो बात नहीं। हमारे प्रारब्ध को भोग रहे हैं, इतना कर्जा किया है तो कर्जा निपटाते हैं, बाकी हमको कोई पौद्गलिक वैभव की अपेक्षा नहीं है।
भाई
अब एक इस प्रकार के करुणा का भाव रहता है, करुणा माता जी के प्रति करुणा आ गई, बस उतनी सी बात है। और अंतर में भीतर में दीक्षा का जो सातवां गुण स्थान है उतना पुरुषार्थ चल जाए तो कोई किसी की इजाजत के लिए रुकता
नहीं।
लेकिन जब इनके प्रति करुणा का विकल्प आ गया तो उतना यहाँ पुरुषार्थ भी आगे नहीं बढ़ा है।
प्रश्न कदा जेवल आगे से कुटुंब प्रतिबंध कहवाए कि नहीं?
बिल्कुल नहीं। ज्ञानी को कुटुंब प्रतिबंध होता ही है, कुटुंब प्रतिबंध छूट जाता है, ज्ञानी बनने से कुटुंब प्रतिबंध छूट जाता है।
इस जात में उदय
उदय उदय
आप बात माँ बाप की आज्ञा तो बाह्य निमित्त उदय
उदय
ऋषभदेव जी भगवान ताशी लाख पूर्व ग्रस्तावास में रहा પાછળ પચાસ પેઢી સુધી થઈ ગઈ તો પણ એ વૈરાગ નહોતો, પણ એ ઉદય નહીં।
જ્ઞાનીને અપને સ્વરૂપ મે એકત્વ કા અનુભવ કિયા હૈ, સ્વરૂપ સે અભિન્ન અનુભવ કિયા હૈ, ઇસલિયે અપને સ્વરૂપ કો છોડ કરકે સભી જીવ और सभी पदार्थ के प्रति भिन्न पड़ा हो गया। अब जो बात रही बाह्य त्याग की, वो पुरुषार्थ आदि होती है, जितना पुरुषार्थ चले उतना सहज हो ही जाता है, और नहीं होता है तो थोड़ा विकल्प रह जाता है, फिर भाई का हो या माता का हो या पत्नी का हो या किसी का, उतना विकल्प रह जाता है, लेकिन वो प्रतिबंध के रूप में नहीं नहीं होता। विकल्प आना एक बात है, प्रतिबंध होना दूसरी बात है। विकल्प चारित्र में है, फिर भी भिन्नत्व का प्रतिभा स्पष्ट है, भिन्नपणा स्पष्ट अनुभव गोचर है और विकल्प है, और उसका निषेध भी है, ऐसी बात है। और प्रतिबंध वाले को तो अपना दिखता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, ऐसा ही दिखता है, उसको मेरे हैं ऐसा दिखता नहीं है, नजर नजर में फर्क है। क्रिया एक सी है, ज्ञानी भी परिवार के बीच में रहता है, ज्ञानी भी परिवार के बीच में रहता है, लेकिन दोनों की नजर में बहुत दृष्टांत है। ये जो बिल्ली है, मिनटी ने बिल्ली कहते ना, बिल्ली चूहा चूहे को भी मुंह में पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है, उसके पाप को पकड़ने का साधन तो मुंह ही है, दोनों की पकड़ में कितना फर्क है। चूहे को पकड़ेगी लोह लोह निकल जाएगा, छोड़ेगी नहीं, इतने जोर से पकड़ेगी खून निकल जाएगा इसका, और अपने बच्चे को पकड़ेगी तो उसको दांत भी नहीं लगे उतनी सावधानी रखेगी। मुंह में दोनों को पकड़ा है, दिखाव तो एक सरीखा है लेकिन पकड़ पकड़ में फर्क है कि नहीं है। ऐसे ज्ञानी भी बेटा को ऐसा ही कहेगा, अच्छा बेटा ऐसा करो तुम, हमारे हमारे बेटा ऐसा नहीं करता कभी। हाँ
बराबर,
तुम तो समझदार हो बेटा, किसका बेटा है तुम, देखो तो सही, ऐसा भी बोलेगा। फिर भी नजर नजर में फर्क है, ज्ञानी को अपना बेटा दिखता है, इसको अपना नहीं दिखता है, वो बात है। ज्ञानी पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे माने अपनत्व करके
जी,
तो ज्ञान को ठोकर मारने जैसा है और सब प्रकार से ज्ञान निंद्रा का हेतु है। इस प्रकार के विचार से दोनों को सीधा भाव कर्तव्य है, दोनों को मैंने आप पति पत्नी दोनों को, कि अपने पुत्रादि के प्रति सीधा भाव करो, सीधा भाव करो, मैंने अपना मत, अपना मत मत समझो, अपनत्व मत करो, उसको भी एक जीव समझो, कि जो जीव संसार परिभ्रमण करते हुए प्रारब्ध योग से हमारे घर में एक संयोग में रहता है, इससे ज्यादा उसके प्रति लगाव मत रखो। दोनों को सीधा भाव कर्तव्य है, यह बात अल्पकाल में ध्यान में लेने योग्य है, मैंने शीघ्र ही ध्यान में लेने योग्य है, धीरे धीरे अपनत्व छोड़ूंगा ये बात नहीं लेना, मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, क्या मेरे से अपनत्व तो मेरे को है, लेकिन मैं अपनत्व छोड़ने का प्रयास करता हूँ, धीरे धीरे मेरा छूटेगा, धीरे धीरे मेरा छूटेगा, ऐसा नहीं लेना, शीघ्र छोड़ो, वस्तु स्वरूप देखो, वस्तु का जो स्वरूप है वो तो स्पष्ट भिन्न है, अस्तित्व कहाँ है, परिवार के किसी सदस्य में अपना अस्तित्व है क्या, है ही नहीं, शरीर में अस्तित्व नहीं, परिवार की बात कहाँ है, शरीर में मेरा कहा तो नहीं मानता, मानता है क्या है, शरीर का एक बाल भी नहीं मानता है, शरीर क्या
है,
वो काले में से सफेद होता है, मानता है किसी का नहीं मानेगा, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, जीव जीव स्वतंत्र है, सब अनंत गुण के धनी हैं, अनंत शक्ति के सब धनी हैं, हमें किसी का धनी होना नहीं है। धनी रहना और दुखी नहीं होना ये दो बात बनने वाली नहीं है। धनी हुआ कि इसकी उपाधि आ पड़ी, उपाधि नहीं छूटेगी, धनी हुआ कि उपाधि आगे, अधिकार और उपाधि एक सिक्का की दो बाजू है, अधिकार और उपाधि एक सिक्का की दो बाजू है, किसी भी प्रकार का अधिकार रखा के उपाधि आगे जाओ, इसलिए अधिकार छोड़ देना। अधिकार छोड़ देना वो सीधा भाव कर्तव्य है, वो सीधा भाव है, और अधिकार रखना वो टेढ़ा भाव है, वो सीधा नहीं है। यह बात अल्पकाल में ध्यान में लेने योग्य है, शीघ्र ध्यान में लेने योग्य है। आप और आपके सत्संगी यथासंभव निवृत्ति का अवकाश लें, यही जीव को हितकारी है। त्रिभुवनदास भाई को कृपालुदेव जानते थे, और इसके संग में आने वाले जीवों को भी जानते थे सत्संगी। तो आप और आपके सत्संगी निवृत्ति लें तो अच्छी बात है। निवृत्ति किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। जितने अवकाश ले मैंने जितनी हो सके उतने, यही जीव को हितकारी है, वो आपके लिए हित का कारण बनेगा। मतलब वो है कि कुछ आयु बीतने पर भी, मैंने 50 साल गुजारने पर भी, 40-50 साल होने पर भी, और कुछ संपन्नता होने पर भी, जीव व्यवसाय में लगा रहता है, वो कुटुंब में अपनत्व का कारण से लगा रहता है। अब भी मेरे कुटुंब का कार्य करना है, अब भी मेरे कुटुंब का कार्य करना है, अब भी मेरे कुटुंब का कार्य करना है। अरे अपनी आयु कहाँ कितनी चली गई वो तो देख, और कब खत्म होगी वो तो पता नहीं किसी को, किसके भरोसे करता है तो प्रवृत्ति। ज्ञानी उनको कहेंगे कि तुम निवृत्ति ले लो, ये अपनत्व को ढीला करके निवृत्ति ले लो। तुम्हारी प्रवृत्ति अपनत्व के कारण से है तो प्रवृत्ति छुड़ाने में अपनत्व छुड़ाने का अभिप्राय है। लेकिन लड़के लाइन पर नहीं हो तो लाइन पर तो ले आए कि नहीं ले आए। देखो सब अपने प्रारब्ध लेके आते हैं। क्या किसी का प्रारब्ध, किसी बेटे का प्रारब्ध बाप बनाता है क्या? है? गलत बात है। फॉरेन में तो वो बात ही नहीं है, जबकि वहां कोई मोह छूट गया है वो बात नहीं है, वहां मोह तगड़ा है तो ऐसी बात है। वहां तो क्या है कि मेरी संपत्ति मैं ही भोगू पूरी पूरी, लड़के को भी नहीं देना। लेकिन अपने को सीधी बात लेना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी अपना प्रारब्ध लेके आया है, वो उसका प्रारब्ध अनुसार कार्य करेगा और प्रारब्ध अनुसार उनको जो भी होगा सो वो प्रारब्ध अनुसार होगा। इसमें कौन क्या कर सकता है कि कुछ नहीं कर सकता। अपना अपनत्व के कारण से जो लगाव है वो अधोगति में ले जाएगा, बड़ी विटंबना हो जाएगी। तो उसको हल्के सी बात नहीं लेकर के गंभीर नुकसान का कारण लेना चाहिए कि जैसे मैं कोई गंभीर अपराध कर रहा हूं ऐसा ले लेना। अल्पकाल में ध्यान में लेने योग्य
चेतवाई
तो थोड़ो फेर पड़े छे। अल्पकाल में एटले शीघ्र અત્યારે જ ચેતી જા એમ કે છે, ચેતવણી દીયા અભી તુમ જાગ્રત સાવધાન હો જા, અભી અભી સાવધાન હો જા, અગર તું અપનત્વ કરતે કરતા હો તો અભી અભી સાવધાન હો જા। ઇતના કામ નિપટાને કે બાદ સાવધાન હોઉંગા કભી તુમ હોને વાલા। जिसको अभी नहीं करना है उसको कभी नहीं करना है। इतना बड़ा नुकसान तो नहीं देखता है जी, इसलिए मूर्खता कहा है कि इतना बड़ा नुकसान को नहीं देखता है कि कितने काल तक तुम परिभ्रमण करेगा। अगर ये वर्तमान मनुष्य भाव तूने गंवा दिया, खो दिया, तो कितना लंबे काल तक, अरबों के अरबों काल तक तुम जन्म मरण करता रहेगा, परिभ्रमण करता रहेगा, इतना बड़ा नुकसान को तुम नहीं देखता है क्या? इसलिए कहते हैं कि अल्पकाल में शीघ्र ही सावधान हो जाते हैं। और अंदर में गुलाट खानी है, इसमें क्या आपत्ति है? तुमको ये थोड़ी ना कहते कि तुम कुटुंब को छोड़ के चले जा, ये तो कहते नहीं है। एक चीज को भी छोड़ने को नहीं बोलते, लेकिन एक शर्त है कि एक चीज में भी अपनत्व नहीं करना है। एक चीज को छोड़ना नहीं और कोई चीज में अपनत्व करना नहीं। जो गुनाह खानी है वो तो अंदर में खानी है, उसमें तुमको क्या आपत्ति है? बाहर में कुछ करना पड़े तो जोर आ जाए, अंदर में परिणाम बदल जाए, कोई कुछ को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पता किसको चलेगा कि जिसके पर बहुत प्यार किया है ना, उसको थोड़ा पता चल जाएगा कि अभी इनके भाव में थोड़ा फर्क दिखता है, टोन बदल गया है क्या? पहले भी उसी नाम से पुकारते थे, अभी भी वही नाम से पुकारते हैं, लेकिन टोन में कुछ उनको पता चलेगा। चलने दो, उतना चले तो उतना चलने दो।
इसमें कोई भी पता लग जाएगा
हैं,
उसके गुरु को भी पता लग जाएगा,
गुरु को ठीक
है,
उसमें क्या आपत्ति? गुरु को तो कोई तकलीफ होने वाली गुरु को थोड़ी ना तकलीफ, तकलीफ तो जिसके पर माया ममता होती है, उसके ऊपर माया ममता कम होती है तो उसको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन समझदारी से काम दो तो कोई आपत्ति नहीं है।
सुख दा मरण।